ओम शांति। बाबा ने आप सबको ज्ञान सरोवर में इतनी सुंदर रिमझिम के बीच भट्टी करने का सुंदर अवसर दिया। अच्छा लग रहा है ना सबको? बरसात की फुहारें पड़ रही हैं और आत्मा पंछी अव्यक्त वतन की सैर करती है। धामा में जिस समय आप आए हैं, हमारी आदरणीय दीदी मनमोहिनी के दिन समीप हैं। कल 28 जुलाई को दीदी का पुण्य स्मृति दिवस है। दीदी को किसी ने देखा है बैठे हैं कोई ऐसे? दो तीन माताएं हैं। हिसार का सेंटर तो खुल गया था, दीदी 83 में अव्यक्त हुई। 83 28 जुलाई को दीदी अव्यक्त वतनवासी बनी। दीदी को देखते हुए मैं इस विषय को आपके सामने रखूं। दीदी का निश्चय, उनका नशा और उसके सामने स्पष्ट निशाना, तीनों ही विशेषताएं दीदी के जीवन में प्रैक्टिकल में हमने देखी। दीदी की 11 वर्षों तक पालना ली। 71 में मैं मधुबन में पहली बार आया, एक मास दीदी की छत्र छाया के नीचे ही रहा। उनकी नजरों से अलौकिक मधुबन में समर्पित होने का सौभाग्य मिला। 71 में तो पूरा ही मधुबन में आ गए। तब से लेकर के दीदी का जो बाबा के प्रति अटूट प्यार था, उनके बोलने में, उनके चेहरे में वो निश्चय झलकता था। एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई। इतना बाबा में फेथ, इतना निश्चय। जैसे मम्मा के लिए कहते हैं ना, मम्मा नंबर 1 क्यों बनी? क्योंकि मम्मा ने बाबा को यथार्थ पहचाना और पहचान करके उसी निश्चय के आधार से हर समय कहा, जी बाबा, जी बाबा। बाबा के किसी भी बात में मम्मा के प्रश्न नहीं उठे। मम्मा की सीट पर ही दीदी को रखा गया। बाबा ने मम्मा के अव्यक्त होने के बाद, मम्मा ने 24 जून 1965 को शरीर छोड़ा और दीदी उस समय दिल्ली में कमला नगर की सेवा पर थी। बाबा ने उनको वहाँ से बुलाया और दीदी ने मम्मा के बाद जो यज्ञ को संभाला, संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन करके, किसका यज्ञ है, किसने हमें निमित्त बनाया है, उनके चेहरे से वो दिखाई देता। आप सबको अपने में विश्वास है पूरा? बाबा की नजर पड़ी, बाबा ने देखा यही मेरे बच्चे हैं जिनको मैंने इतना श्रेष्ठ देवता बनाया था। लेकिन देवता बनने वाली आत्माएं, क्या उनको अपने में संपूर्ण निश्चय है कि मैं ही देवता था, मुझे ही बनना है और बाबा मुझे ही बनाएगा? है निश्चय अपने आप में? किसको किसको है संपूर्ण निश्चय? थोड़ी थोड़ी माता ने हाथ उठाते, समझ तो रहे हैं ना सभी? जब संपूर्ण स्वयं में निश्चय है कि बाबा की नजरों में हम सबको ये नया जन्म मिला, इतनी श्रेष्ठ पवित्र ब्राह्मण जीवन मिली, बाबा हमें स्वयं शिक्षक बन करके इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो हम तो देवता जरूर बनेंगे। भले कैसे भी कोई संस्कार हो, कोई कमी कमजोरी हो भी, संपन्न अभी तो नहीं बन गए, लेकिन फिर भी कभी दिल शिकस्त नहीं होते। आज बाबा ने कहा मुरली में कि मेरे बच्चे कभी कभी बहुत जल्दी दिल शिकस्त हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। एक मैं है जो अभिमान ले आता है, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत प्लानिंग बुद्धि हूँ, मैं पन में मियाँ मिट्टू बन जाते, अहंकार आ जाता। और दूसरा मैं कमजोर बना देता है, पता नहीं मेरे अंदर कोई विशेषता है या नहीं है, मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, मैं देवता बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये भी एक अपने आप में संशय है। जब भगवान की नजर पड़ी है तो वो तो बना के ही छोड़ेगा, कैसे भी बनाएगा, चाहे प्यार से बनो चाहे मार से बनो, बनाएगा जरूर, क्योंकि उसके हाथ में ही चाबी है। तो प्यार से बच्चे बच्चे कह करके हमें योगी योग्य बना रहा है, और जितना हम योग्य और योगी बन रहे हैं, दिव्य गुणों को धार रहे हैं, वो हमारे दिव्य गुण ही बताते हैं कि यही देवता बनेंगे। तो संपूर्ण निश्चय स्वयं में पहला चाहिए। दीदी को जिस दिन से बाबा मिला, पहचान मिली, धक से सोखी, सोचा ही नहीं क्या होगा आगे चल के, जबकि मालूम है दीदी को जो उनका लौकिक परिवार बहुत पैसे वाला था, धनाढ्य परिवार था, और जहाँ दीदी की शादी कर दी थी, शादी हो चुकी थी, छोटी उम्र में ही कर देते थे सिंध में, तो वो परिवार भी बहुत मुखिया परिवार, पैसे वाला परिवार। लेकिन जिस दिन से बाबा मिला, परिचय मिला, सच्ची गोपिका तो मैं हूँ, नाम उनका गोपी था लौकिक में, और वो गोपिका बन करके बस तुझे ही देखती रहूं, इतना बाबा से प्यार गए, और बाबा के प्यार में उनके नैन गीले हो जाए, कहां से बाबा आपने मुझे निकाला। तो दीदी अपनी लौकिक माँ और छोटी बहन के साथ यज्ञ में आई, और दीदी की जो दूसरी चचेरी बहन थी ब्रजशांता दादी, उनकी छोटी बहन हरदेवी और उनकी माँ, एक ही परिवार से छह लोग, छह बहनें, और एक धक से समर्पित हो गई। कुछ नहीं सोचा कैसे चलेगा, क्या परिवार में हलचल होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं। निश्चय बुद्धि विजयंती, मुझे जिसको पाना था वो पा लिया, बस एक धक से सब कुछ त्याग करके समर्पित हो जाना, कोई चीज की परवाह नहीं, ये निश्चय की परीक्षा थी, निश्चय की परख थी। और उसी निश्चय के आधार से, एक धक से निर्णय लेना, अपने निशाने पर पहुंच गई। कोई लौकिक की परवाह नहीं, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कौन पालना देगा, इतने अच्छे परिवारों में पली हुई, इतना पैसे वाले लोग, लेकिन कोई चीज की चिंता नहीं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत बन जाता, कोई चिंता नहीं। क्यों निश्चय चिंता नहीं, क्योंकि उसको ये निश्चय है कि किसके ऊपर हम बनिहार जा रहे हैं, स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान, उसको हमने पाया, उसको हमने जाना, बस उसको देखा और एक धक से अनुभव हुआ कि यही तो मेरा गिरधर गोपाल है। शिव बाबा का परिचय भी नहीं था, पहले पहले शिव बाबा को नहीं पहचाना, ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण दिखाई देते, ब्रह्मा बाबा गुम हो जाते, वहां श्री कृष्ण दिखाई देता। बस यही निश्चय मुझे मिल गया, श्री कृष्ण भगवान मुझे मिल गया और समर्पित हो गए। उसके बाद बहुत सारी बातें आई, लौकिक की बहुत परीक्षाएं आई, दो परिवार एंट्री हो गए, एक मायके का परिवार, एक ससुराल का परिवार। बहुत हंगामा किया, पिकेटिंग किया, हंगामा किए, बहुत कुछ किया, लेकिन इतना निश्चय बुद्धि, कोई हिला नहीं सका। वो नशा था, बोल में, चलने में, बात करने में, जो हर एक का सामना किया। परीक्षाएं से भाई यज्ञ में आ गए तो दीदी को बाबा ने माताओं को सिलाई सिखाने की सिलाई स्कूल खोल दिया कि तुम इन माताओं को सिलाई सिखाओ। जितनी माताएं आई थी यज्ञ में शुरू शुरू में, उसकी टीचर दीदी को बनाया, दीदी मनमोहिनी को। नाम मनमोहिनी बाद में पड़ा, लेकिन गोपी कहते थे। और जो बाबा कहे, जहां बिठाए, जो कराए, जैसे कराए, कभी भी प्रश्न नहीं। बच्ची यहां जाएंगी सेवा करने। दीदी को सिर्फ एक बात की बाबा के साथ हुआ था। एक बार बाबा ने कहा, बच्ची थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि स्कूल नहीं गई थी, पढ़ना लिखना नहीं आता था, साइन भी नहीं करती थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची थोड़ा सा टीचर दे देता हूं मैं। एक टीचर निमित्त बना दिया बहन को। और दीदी जो थोड़ा रोब वाली, रुहाब वाली थी, जो नशा कहते हैं ना, नशा कौन सा होता है, ये मुझे क्या पढ़ाएगी, भगवान मुझे पढ़ा रहा है। तो उसने पढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पढ़ती नहीं थी। तो बाबा के पास कंप्लेन लेके गई, बाबा आपने कहा इसको पढ़ाओ, ये तो कुछ सुनती नहीं है मेरी, पढ़ती नहीं है, मैं क्या करूं। बाबा ने बुलाया, बच्ची थोड़ा सीख लो, साइन करना सीखो, काम आएगा आगे। बाबा मैं तो सीखना चाहती हूं, लेकिन ये जो सिखाने वाली है ना, ये मेरे को कहती है तुम लिखो धृतराष्ट्र। अरे अंधे का नाम मैं क्यों लिखूं। बाबा हंसने लगे, क्योंकि धृतराष्ट्र हिंदी में लिखने में बहुत मेहनत थी, कैसे लिखे टेढ़ा मेढ़ा। तो बाबा हंसने लगे कि अच्छा अच्छा बच्ची कोई बात नहीं, ठीक है, तुमको भगवान ही पढ़ाएगा। और ऐसा पढ़ाया भगवान ने, जो आज तक भी हम सब प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं ना, दम मेरा आ गया, राजू भाई लिखता है, लेकिन सब दीदी ही निकालती थी। हम जब शुरू शुरू तो दीदी ही हमारे क्लास की मॉनिटर थी जी, मुरली सुनाती थी। दीदी ने मुरली कभी नहीं हाथ में पकड़ी, सुनाई। हमने नंबर वन स्टूडेंट जो बाबा पढ़ा रहा है सुनती थी ध्यान से, और उसमें से कम 30-40 प्रश्न बना लेती, छोटे छोटे प्रश्न, और ऐसे प्रश्न लिखती जो सारी क्लास को उसी मुरली में फेल कर देती। मुरली पूरी होते ही, क्योंकि ये कुर्सी सोफा नहीं थे, सब पट्टी था, जमीन में ही सब बैठते थे, तो दीदी अपना मुंह घुमा लेती क्लास की तरफ, कहती अभी जो अभी मुरली सभी ने सुनी है, प्रश्नों का उत्तर देना, जो पास होगा उसको डबल टोली मिल जाएगी, और जो फेल होगा उसकी टोली बंद। तो बहुत प्यार से प्रश्न पूछती, और फिर जब देखती कोई उत्तर नहीं देता तो सुनाती थी कि देखो बाबा ने ये बात कही। और फिर मेरे को बुला के कहती थी, तुमने सिंधी सीख लिया ना, अभी मेरी डायरी ले जाओ। और दीदी की डायरी में मुझे एक लाइन भी पढ़ना नहीं आता, क्योंकि उनकी अपनी ही सिंधी थी, अपनी ही भाषा थी, शॉर्ट कट। इंग्लिश में लिख देना लक्ष्मी नारायण को एल और एन, सृष्टि चक्र को लिखना यस और सी, इंग्लिश भी, हिंदी भी, सिंधी भी, सब मिक्स गोलमोल भाषा। तो दीदी को मैं कभी कहता, दीदी ये पढ़ने में नहीं आता है, आप थोड़ा पढ़ के सुना दो, तो हंसने लगती, कहती मैं भी कभी कभी नहीं पढ़ पाती हूं। लेकिन एक दादी थी जो दीदी की राइटिंग को अच्छी तरह समझ गई थी, कमलमणि दादी का कृष्णा नगर में जो थी भी, तो वो मेरे को कहती मैं तुमको सिखाऊंगी। आती थी मेरे ऑफिस में आ जाती थी और मुझे पढ़ के एक एक लाइन सिखाती थी। तो दीदी स्टूडेंट लाइफ में नंबर वन बनी और बाबा के ही स्टूडेंट बनी, किसी इंसान की नहीं बनी, और मुख्य प्रशासिका बनी। मम्मा के बाद 5 साल तक दीदी ने जो पार्ट बजाया बाबा के अव्यक्त होने तक, अव्यक्त होने पर दादी प्रकाशमणि की जोड़ी बनी। दादी प्रकाशमणि तो पढ़ी लिखी भी थी और बहुत अच्छा लेक्चर करती थी, मुरली सुनाने में ध्यान डांस कराती थी। तो दीदी और दादी की जोड़ी बनी 69 जनवरी में। 21 जनवरी को शिव बाबा ने, बाप दादा ने गुलजार दादी के तन में प्रवेश करके इन दोनों को ही कलश दिया, कलश रख दिया, अभी तुमको आगे चलाना यज्ञ को मिल करके। और फिर दीदी दादी ने जो कमाल किया, जो निश्चय की परिभाषा है उनके जीवन से उस समय दिखाई दी कि बाबा का निश्चय है, बाबा हमारे साथ है। कोई भी बात का निर्णय खुद नहीं लिया, एक मिनट में बुलाओ गुलजार दादी को, बिठाओ उधर, गुलजार जाओ बाबा के पास, अभी संदेश लेके आ जाओ, अभी जाओ बाबा को बोलो बाबा चलो बच्चों के पास, बहुत जरूरी काम है। और भोग वोग कुछ नहीं, गुलजार दादी बाबा के कमरे में जो गद्दी पड़ी ना, गद्दी पर बैठ जाती, ट्रांस में जाती और बाबा आ जाते। सामने कौन, एक दादी, एक दीदी और एक ईसु दादी, केवल 3 ही, चौथा कोई नहीं। और उनसे सब डायरेक्शन लेना, एक एक बात पूछना, कहाँ क्या सेवा करनी है, कैसे करनी है, बाबा एक एक बात के लिए गाइड करता सब। तो दीदी और दादी की जोड़ी ने फिर यज्ञ को कैसे कहाँ पहुंचाया, और इतना संपूर्ण निश्चय कि बाबा तो कहीं जा ही नहीं सकता, संपूर्ण निश्चय था। यज्ञ रचयिता ने यज्ञ रचा है, और जब तक यज्ञ संपन्न नहीं हुआ है, स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ है, तब तक ब्रह्मा बाबा कहीं भी जा नहीं सकता। शरीर भले छूटा है लेकिन सात और हाथ नहीं छूट सकता, ये संपूर्ण निश्चय दीदी और दादी का। और इतना प्यार से भगवान को स्नेह की रस्सी में बांधा, जब कहा बाबा आपको आना है, तुरंत बाबा आ गए। किसी सेवा के लिए, किसी कार्य के लिए बाबा को कहा, बाबा गुलजार बच्ची को, ऐसे गुलजार दादी उनको कहती थी, गुल जा बाबा के पास बुला लो, बाबा से पूछ के आ जाओ। बस एक सेकेंड में दादी गई और बाबा आ गए। इतना विश्वास कि बाबा का यज्ञ है, और जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है बीच में बाबा जा ही नहीं सकता है। आप लोगों को निश्चय, इस बात का निश्चय है कि बाबा का पार्ट पूरा हो गया, 2017 तक तो बाबा अव्यक्त रूप में आए, आज 8 साल हो गए और बाबा कहाँ आता है। कई बाबा के बच्चों को भी संशय पड़ जाता, पता नहीं जन्म ले लिया होगा, क्यों नहीं आता, किसी में भी तो आ सकता था। कहता है बच्चे जब टीचर पढ़ा के पूरा करता है, पेपर का समय आता है तो बार बार बच्चों के बीच में नहीं आता, सिखा दिया ना सब कुछ, पढ़ा दिया, अब देखता है वो कितना तुम योग्य बने हो, योगी बने हो, कितना बाबा को समझा है, पाया है, आपकी चलन से चेहरे से बाबा दिखाई देता है, साक्षी होके देख रहा है, लेकिन सब कुछ करके अपने आप को छिपाया हुआ है, छिपा लिया। आज हजारों बाबा के बच्चे मधुबन में आते हैं, शांतिवन में आते हैं, इतना बड़ा कारोबार, इतनी वृद्धि, इतना विस्तार हो रहा है, सबको वो भासना और पालना मिल रही है। कौन कर रहा है, कोई आत्माएं कर रही है। दादियां भी चली गई, बड़े भाई भी सब निकल गए, लेकिन फिर भी यज्ञ का विस्तार हो रहा है, फिर भी आने वालों को भासना पालना मिल रही है। कितना गुप्त मशीनरी है भगवान की, जो वतन में बैठ कर के बच्चों को कैसे चला रहा है, नचा रहा है, काम करा रहा है, और जो जिस भावना से आते हैं उसी को उसका फल मिल जाता, उसी तरह के उसको अनुभव हो जाते हैं। ये निश्चय चाहिए, और दादियों ने इतना निश्चय बुद्धि बन के निश्चिंत स्थिति रही, कुछ भी हो जाए, कितने भी हिलोरी आए, हम सब सच की नैया में बैठे हैं, है निश्चय। हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेंगी नहीं, कोई भी डूबो नहीं सकता, कितनी भी परीक्षाएं आ जाए, कितना भी लोग इसको हिलाने की कोशिश करें, लेकिन हम ऐसे नाव में बैठे हैं जिसका कि भैया स्वयं भगवान है, उसको कोई हिला नहीं सकता, डूबो नहीं सकता। ये संपूर्ण निश्चय है तो निश्चिंत है, कोई भी पेपर में हिलते नहीं। एक बार की बात सुनाता हूं, जब ओम शांति भवन बन गया, बहुत नाम हुआ, बहुत चारों तरफ से जय जयकार जैसे होने लगी, क्योंकि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, इतने बड़े बड़े वीआईपी आए, पूरा आबू ही ब्रह्मा कुमारी का, एक भी कमरा, एक ही चारपाई कोई को नहीं मिल सकती, पूरे आबू पर कब्जा, धर्मशाला, कोई भी रहने का स्थान सब बुक ब्रह्मा कुमारियों के लिए। तो लोगों को लगा रहा यहाँ खाने के लिए नहीं था, एक दिन संस्था क्या थी और आज तो क्या हो गई, तो थोड़ा जलसी होती ना, जलसी हो गई, और ऐसे विघ्न आने लगे। बस उसके बाद 83 में ओम शांति भवन बन के तैयार हुआ, उसके बाद एक के बाद एक पेपर, जय जयकार तो हो गई कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उसके बाद जो चिड़े लोग ईर्ष्यालु, उन्होंने कुछ न कुछ कलंक लगाना शुरू किया, सरकार को भड़काना, इधर करना उधर करना, एक बार कोई भी आईपी आए तो इनके पास आ ही नहीं सकता, सिक्योरिटी इतनी नहीं आ सकता। बाबा तो बेफिक्र बात सा, बच्चों को भी कहता है, अरे बच्चे किसके बच्चे हो, निश्चिंत रहो, कोई चिंता नहीं करो। तो एक बार ऐसे ही बाबा को बुलाया, ओम शांति भवन में बाबा आए, थोड़े मधुबन वालों को बिठाया सामने, और उसके बाद थोड़ी सब मैं टाइप कर रहा था, कोई लिख रहा था, कोई रिकॉर्ड कर रहा था, भवन ने सब बंद कर दो, सबको बंद कराया, और अपने भाइयों को, बड़ों को, दादियों को सामने बुलाया, इधर आओ, सबको सामने बुलाया। फिर एक एक से पूछा क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, कितने विघ्न आ रहे हैं, तो सबने अपनी बातें सुनाई, बाबा ऐसे हुआ, ये है, ये रुकावट, ये विघ्न। बाबा इतना प्यार से मुस्कुराते हुए, टांग पर टांग चढ़ा के बेफिक्र बैठा, निश्चिंत होके पूछता गया एक एक से, कुछ हमने मुस्कुराए सिर्फ। जब सबको हल्का किया, सबसे पूछ लिया जो जो बातें हो रही थी, बाद में कहता है, बच्चे जो सवेरा आने वाला है उसको ये बादल रोक सकते हैं क्या, जो सतयुगी दुनिया स्थापन होने वाली है, जिसके लिए तुम सब निमित्त बने हो, कोई भी कितनी भी रुकावटें आए, कितने भी बातें आए, कितने भी पेपर आए, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, इसलिए इनकी बातों की परवाह नहीं करना। किसके सामने पेपर नहीं आते, बातें आती, जब अच्छे काम के लिए आगे बढ़ोगे कुछ न कुछ विघ्न आएंगे, कोई न कोई रुकावट आए, डरना नहीं, घबराना नहीं। जो निश्चय बुद्धि है वो किसी भी बात में हिलते नहीं। बाबा के आगे कितने पेपर आए, चलो अभी तो इतना बड़ा परिवार है, इतने भाई बहने हैं, इतने प्रवृत्ति वाले हैं, और बाबा के ऊपर अकेले एक बाबा और इतनी सब बहनों का संरक्षक, बहनों की संस्था, कितने कलंक लोगों ने लगाए ब्रह्मा बाबा पर, डायरेक्ट वर्षा गालियों की, दादा को 108 रानियां चाहिए, 1008 चाहिए, 16108 चाहिए, अभी तो 400 मिल गई है उसको उसमें, और बाबा बेफिक्र बा सारे बच्चे, किसकी रानियां थी, हमको क्या चाहिए। इतना निश्चय बुद्धि, निश्चिंत निर्भय, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। ये लेवरे आए, बहुत सारे आए, लेकिन ब्रह्मा बाबा का निश्चय इतना था कि भगवान का काम है, स्थापना उसको करनी ही है। बातें आती हैं, खत्म हो जाती हैं, परवाह थोड़ी करनी है। बातें बीत गई और हम उसको पकड़ के रोते रहे, दुखी होते रहे, समझदारी थोड़ी है, ये निश्चय की कमी है। अब यहां आबू में आए, पेपर पर पेपर, कोई पैसा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई सहयोग देने वाला नहीं, ठंडी इतनी, कोई के पास गर्म कपड़े नहीं, कोई दवाई नहीं। और जब शिव बाबा से पूछे तो शिव बाबा भी मजा लेता था वतन में, देखिए अभी क्या करते हैं। ठंडी सबको लगी, सर्दी जुकाम हो रहा है, दवाई नहीं है, और बाबा के पास संदेशी को भेजा, जाओ दवाई पूछ के आओ बाबा से। तो बाबा कहता है, इन बच्चों को 15 दिन के लिए छाछ पिलाओ, डोडा खिलाओ बाजरी का। अब जो थोड़ी हिलने वाले थे ना संदेश में, जिनको इतना विश्वास नहीं होता था, वो तो डर गए, ऐसा कैसे संदेश आ सकता है, हमको छींके आ रही हैं, सर्दी लगी है, इतनी बरसात पड़ रही है, और डायरेक्शन आ रहा है इनको छाछ और डोडा खिलाओ। कहीं तो भागने लगे यहां से। अब बाबा मुस्कराए, हमारी दादी थी ना परदादी, परदादी जानते, निर्मल शांता दादी, बाबा की जो बेटी थी उसको हम परदादी कहते। तो उनको दमा था, तो दमा की दवाई के लिए बाबा के पास भेजा संदेशी को, भाई दवाई नहीं है, इसको दमा है, इतना परेशान हो रही है। तो वो ट्रांस में गई और कहती है, बाबा ने कहा इस बच्ची को बर्फ के पानी से नहला दो। ब्रह्मा बाबा ने सुना संदेश तो हंसने लगा, कहता अब तो इसको मरना ही है शायद, आयु पूरी हो गई है, क्योंकि उनको पता भी था लोगों को कि बस आयु उनकी पूरी हो गई। तो ऐसा है, उसको संदेशी को बोला, तुमको बाबा ने कहा ना संदेश में, इसको बाथरूम में ले जाओ, बाल्टी बर्फ की इसके ऊपर तुम डाल देना, तुम्हारे पर कोई केस नहीं करेंगे, बाबा ने तुमको कहा है इसको ले जाओ अंदर, और बर्फ की बाल्टी दे दिया। अब वो गई, बर्फ बैठा दिया दादी को बाथरूम में उस पर, और बाल्टी ऐसे उठाया और उठाते ट्रांस में चली गई, संदेशी फिर से चली गई, बाल्टी हाथ में बर्फ की, गई वापस आके कहती है, बाबा ने कहा इसकी सताई हो गई बच्चे की, इसका निश्चय कितना था, मरने के लिए भी डर नहीं है, भले मर जाएंगे, भगवान ने कहा है बर्फ से नहाना, नहा लेंगे, ये निश्चय था, और इस निश्चय की विजय थी। वो 98 ईयर्स तक नहीं शरीर छोड़ा, सब बीमारी ठीक हो गई। आप समझ सकते हो, निश्चय की परीक्षा तो होती है, लेकिन वो निश्चय विजयी बनाता है। कोई भी बात में, भगवानों वाच्य में हिलना नहीं है, जो कहा है वो करके दिखाना है। पेपर आए, परीक्षाएं आई। एक दिन बाबा कहते हैं बच्चों को, होली के दिन, आज होली की मूली सुनी थी ना, ऐसे होली के दिन बाबा कहते हैं बच्चे जलेबी का भोग लगेगा। बोल दिया, खाने के लिए आटा नहीं है घर में, तेल नहीं है, चीनी नहीं है, कुछ भी नहीं है भंडारे में। और बच्चे होली पर जलेबी का भोग लगता है ना, बाबा को इस बारी होली पर जलेबी का भोग लगेगा। भंडारे वाली दौड़ के आई, बाबा आपने क्या कहा, पता है भंडारे में कुछ भी नहीं है। अरे बच्ची मैंने नहीं कहा, अब वो ऊपर वाला बोल के चला गया तो मैं क्या कहूं। अच्छा ठीक है, बाबा ने कहा ना बच्ची जाओ आज, आज रात भर योग करेंगे, 2 बजे योग करेंगे सब। यहीं पर भरतपुर राजा की कोठी में रहते थे, उस समय की बात है एक, तो उस कोठी में 2 बजे लाल लाइट जल गई कमरे में, योग कक्ष में। जब लाल लाइट जली, सब बहनें आने लगी, योग शुरू हुआ, तो सामने एक परिवार रहता था सिंधियों का, उसका जो पति वो एंटी था, बहुत सिंध से ही आया था, और उसकी युगल थोड़ा छिप छिप के भावना से आती थी क्लास करने कभी कभी। कहता है, जगाया अपनी पत्नी को, कहता देख त्योहार पर भी बाबा बच्चों को सोने नहीं देता, तेरा बाबा ने सबको उठा दिया, योग करा रहा है, और मेरे को कहता तेरे पास कितना रखा है सब भेज दे, देख भंडारी में अलमारी में कैसा रखा है। कहती है सवेरे देखूंगे, अभी छोड़ो मेरे को नींद करने। अरे सवेरे तक मेरी बुद्धि बदल जाएगी। अभी वो कहता है जितना रखा है सब भेज दे, देख अलमारी में कितना रखा। बाया पोटली बनाई और वो बहन को दिया अपने युगल को, और वो लेके जब आई तो दादी ने कहा अरे तुम क्यों आई, तेरा पति मारेगा, रात को क्यों आई तुम। कहती उसको नींद नहीं आ रही है, उसने भेजा मेरे को, अब ये पैसा ले लो मैं जाती हूं। दिया सवेरे सब चीजें आई, समय पर जलेबी का भोग बन गया, एक दिन भी भूखा नहीं रखा। इतनी परिणति थी कि सवेरे भंडारे वाली बोल रही है बाबा कुछ भी भंडारे में नहीं है, 10 बजे पोस्ट आती है तब तक वेट करो, तब तक बच्चों को चलो पहाड़ पर घुमा के लाते। सवेरे गए बाबा पैदल कराने के लिए, वहां जामुन है करौंदा है बहुत ही तो सारा है संसार, खूब करा दिया। वापस आए, अच्छा बच्चे रेस्ट करो, 10:30 बजे पोस्ट आई, उसमें लिफाफे में 500 रुपया 1000 रुपया खुले ऐसे लिफाफे में आ रहे हैं, जाओ बच्ची राशन ले आओ। बच्चों को कोई को पता नहीं है कि आज क्या मिलेगा, लेकिन पूरा ही दाल चावल रोटी सब्जी सब टाइम पर फिक्स 1 बजे बेल बजी। कौन खिलाया? निश्चय की विजय। हिल जाते तो हिल गए होते, लेकिन बच्चों को बाबा खिलाएगा भूखा नहीं रखेगा उसके बच्चे हैं ये निश्चय, मेरे थोड़ी है निश्चय। परिवार में 4 सदस्य होते हैं, कोई भी पेपर आ जाए कैसे होगा क्या होगा, कुछ तो इधर उधर करना पड़ेगा, और बाबा कह रहा मांगने से मरना भला। सबके संबंधी करोड़पति हो गए, लोग लखपति हो गए, चंदियों के बच्चों के पिता माता पति यहाँ भारत में आके बिजनेस किया, और बाबा आबू में आए तो कोई सहयोग नहीं दे, और बाबा कहे किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कुछ नहीं है, वो अखबार में लिखो ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। नशा क्या होगा आप सोचो, नशा किसको कहते हैं, खाने के लिए चार आना नहीं है, और वो मनी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, ये नशा था और ब्रह्मा बाबा का नशा था, क्योंकि वो जानता था जिसके बच्चे हैं वो कभी भूखे तो रहेंगे नहीं, और ओम मंडली में इतना ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, सच्चाई का धन है, वो इतना धन है उसके पीछे वो धन क्या है, पीछे पीछे आएगा, लेकिन इस धन को बांटो। अब यहां दरवाजा खुला सेवाओं का, नहीं कोई सेवा पर निकलने के लिए तैयार नहीं, मरेंगे जिएंगे तेरे साथ रहेंगे, और बाबा को सेवाएं करानी तो परीक्षा तो लेगा, परीक्षा लिया जाओ बच्ची, सबको भेज दिया सेवा पर। गुलजार दादी को कहता है बच्ची जाओ लखनऊ में गवर्नर हाउस में सेंटर खोल के आओ। बाबा लखनऊ कहाँ है, बहुत भोली थी गुलजार दादी तो छोटी भी थी। अरे बच्ची अंधों ने मुल्तान को ढूंढा, तेरे त्रिनेत्री को लखनऊ नहीं मिलेगा, जाओ तुम ट्रेन में बिठा दो जाकर के इसको, चली जाएगी। उधर ट्रेन में जा रही थी, उस ट्रेन के डब्बे में सब बीड़ी पीने वाले जनरल डब्बे में बिठा दिया, पैसा तो था ही नहीं किसी के पास, इतनी उल्टी आने लगी, दिल खराब हो गई, सब बीड़ी पी रहे हैं सिगरेट पी रहे हैं बहुत बोल रहे हैं, और दादी ने तो कभी आवाज सुनी नहीं थी, हलचल में कभी आई नहीं थी, दुनिया को जानती नहीं थी। यहां से आबू रोड से बैठी अजमेर में उतर गई ट्रेन से, और सीधा स्टेशन मास्टर के पास, ए तुम्हारी ट्रेन में लोग कैसे कैसे हैं, बीड़ी पीते हैं गंदगी करते हैं, इतनी गंदी ट्रेन तुमने रखी है, मुझे लखनऊ जाना है, मैं इस डब्बे में नहीं जा सकती हूँ। अच्छा दीदी आपको लखनऊ जाना है, आप पैसा दो मैं टिकट बना देता हूँ, फर्स्ट क्लास में बिठा देता हूँ, उसमें कोई बीड़ी नहीं पीता। पैसा क्या होता है, पैसा क्या होता है, ये भोलापन सच्चाई थी। उसने देखा इतने सच्चे हैं, इतने पवित्र बोले हैं, कहता अच्छा कोई बात नहीं, अपने पैसे से टिकट बना के उसको बिठाया, लखनऊ पहुंच गए। बाबा ने कहा गवर्नर हाउस में खोलना है, कौन गवर्नर होता है, कैसे वहां पहुंचना होता है, कुछ पता नहीं है, लेकिन निश्चय बल, निश्चय का बल भगवान ने कहा है। अब थ्री पैडल वाले रिक्शा थे, पैडल वाले रिक्शे में बैठती, पैडल वाले रिक्शे वाले बोलते तुम गवर्नर हाउस में ले चलो। अरे दीदी गवर्नर हाउस में जाना कैसे, क्या हो गया आप, कैसे जाएंगे, वहां तो बहुत सिक्योरिटी होती, बहुत पुलिस वाले। अरे तुम ले चल। सिक्योरिटी वाले ने रुका, कहाँ जाना है, हमको बाबूजी से मिलने जाना है। ये नहीं बोला गवर्नर से मिलने जाना है, बाबूजी से मिलना है। उसने समझा कोई उनके संबंधी लगते हैं, जाओ जाओ जाओ। पहुंच गए गवर्नर हाउस, बैठ गए, जाके वहां पर मीटिंग रूम में बिठा दिया। आए सिक्योरिटी वाले, किससे मिलना दीदी, हम अपने बाबूजी से मिलना, उनको बोलो बहने आई मिलने के लिए। बाबूजी आ गए हाथ जोड़ करके, गवर्नर साहब आ गए। गवर्नर साहब मुझे बाबा ने भेजा है माउंट आबू से, यहाँ गवर्नर हाउस में मुझे सेंटर खोलना है, मुझे दो कमरे चाहिए। आप कौन हैं, क्या सेंटर खोलेंगी, कौन बाबा है, कुछ पता नहीं। निश्चय, वो निश्चय था उनका। कहती कुछ भी करो बाबूजी, मुझे तो दो कमरे दे दो, आपके पास बहुत कमरे पड़े हैं, बंद पड़े हैं, मैं यहाँ गवर्नर हाउस में सेंटर खोल के जाऊंगी, बाबा ने मुझे भेजा है। बेचारे ने कहा अच्छा दो, उसको दो कमरे दे दो, ले जाओ चाबी, करो जाके सेवा। गवर्नर हाउस में सेंटर खोल दिया, उसके बाद लखनऊ की सेवाएं शुरू हुई। ये निश्चय की विजय, और इतनी निश्चिंत स्थिति, और इतना बाबा में फेत, बाबा ने कहा है ना हो जाएगा, वो नशा भी था, जरा भी ये नहीं था मैं पैसा नहीं है, कौन मदद करेगा, कैसे लोग होंगे, कुछ नहीं परवाह की, बस बाबा बाबा बाबा। सेंटर खुल गया लखनऊ, सेवाएं शुरू हो गई। उसके बाद फिर हजरतगंज खुला, दूसरी जगह सेंटर्स खुले। दादी ने, बाबा ने चार दादियों को वहां भेज दिया लखनऊ में। एक शांतामय दादी गई, एक भगवती दादी गई, एक सती दादी गई, एक कृष्णी दादी गई, और उसमें से मोहिनी बहन का जन्म हुआ, जो लखनऊ की मोहिनी बहन थी दादी के पास। कितनी सेवाएं बाबा ने कराई, लेकिन सेवाओं में भले कितने भी विघ्न आए, परीक्षाएं आई, कोई भी हलचल नहीं, क्योंकि हमारा साथी कौन है? कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। कितने भी तूफान आए, कितनी भी आंधियां आए, लेकिन उसको कोई रोक नहीं सकता। ये था निश्चय का बल, और उस निश्चय के बल से आज ये नैया, एक छोटा सा परिवार, छोटा सा बीज, 350 लोगों से आज हजारों क्या लाखों में बदल गया। कैसे सेवाएं हुई, कैसे इसका विस्तार हुआ, और कैसे बाबा अभी भी गुप्त रीति से इस परिवार की पालना कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था दीदी का बाबा में भी इतना परिवार प्यार, और दीदी दादी का बाबा की एक एक वाक्य में इतना निश्चय। ये भगवानों वाच्य है, संकल्प में भी नहीं आया ये बाबा कैसे बोलेगा, कैसे कहेगा, भगवान के महावाक्य। ये प्रैक्टिकल होने ही हैं, ये नहीं सोचा कैसे होगा। अरे बच्चे तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, विश्व कल्याण करने का काम मुझे कैसे, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे कोई शक्ति नहीं है, कोई संकल्प नहीं किया। बाबा ने कहा तुम्हें विश्व कल्याण करना है, तुम्हें हर धर्म वाले को ज्ञान देना है। जानकी दादी को जब पहले पहले बोला गया लंदन जाओ, तो लंदन जाओ क्या करूंगी दादी मैं वहां जाके, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, मैं तो 3 क्लास पढ़ी हूं। दादी जानकी ने बोला, बाबा ने, बाबा के सामने दादी ने बिठा दिया, बाबा आप इनको बोलो। बाबा के सामने गई, बाबा ने कहा बच्ची तुम जाओ लंदन में और दूसरा मधुबन बना के दिखाओ, ये जैसा मधुबन है ऐसा मधुबन बना के दिखाओ। दादी कोई बीमार थी, बहुत बीमार थी, बिस्तर से नहीं उठ सकती थी, लेकिन बाबा ने कहा, कोई चिंता नहीं की, सब दवाइयां साइड में फेंक दी और उस बीमारी में लंदन चली गई। और गई एक छोटे से कमरे में रही जहां सोने के लिए एक चारपाई नहीं थी, छोटा सा मकान, इतनी खांसी दादी को, बिस्तर नहीं, पलंग नहीं, कुछ नहीं। एक दिन ऐसे पैदल कर रही थी, सामने एक भाई ने अपने घर का दरवाजा नया लगाया था, पुराना निकाल के बाहर रखा था। दादी कहती है, क्यों निकाला भाई? कहता, दादी हमने नया लगा लिया, अभी म्युनिसिपैलिटी वाले आएंगे, उठा ले जाएंगे पुराना। कहती, अरे म्युनिसिपैलिटी वाले क्यों ले जाएंगे, तुम मेरे पास भेज दे कमरे में। ले आया उठा करके। दादी ने उसके नीचे सामान रखा, ईंटें रखी, किया और उसको ही सुंदर बना लिया। उस पर सोई और सवेरे उठ करके उस पर मुरली सुनाई, क्लास कराया, सेवा शुरू करा। रात भर खांसती थी तो सामने दूसरा जो मकान, दूसरा कमरा था, उसमें एक अंग्रेज रहता था। वो अंग्रेज नॉनवेज खाता था, वो जब छौंक लगाता बनाता कुछ तो दादी को बस इतनी खांसी आती सहन ही नहीं होता। अब वो बेचारे को रहम आया, बूढ़ी माता इतना तंग हो रही है मेरे खांस, मेरे भोजन से, मेरी इसकी छौंक से, आया, दादी मुझे माफ़ करो, मैं तो इसके बिना नहीं रह पाता हूँ, आप ये मकान ले लो, मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ, दूसरा मकान ले लो। दे के चला गया। टेनिसन रोड जो है ना, पहला मैं दो बार हुआ आया हूँ, मैं दोनों बार गया वहाँ देखने। वो छोटा सा स्थान छोड़ा नहीं अभी भी, लेकिन दो कमरे में रह करके आज पूरा मधुबन का मॉडल बना दिया, जो बाबा ने कहा था आप देख लो जाकर के, जगह जगह पर सेंट्रल लंदन के कोने कोने, 7 एकड़ में रिट्रीट सेंटर ऑक्सफोर्ड में, ग्लोबल हाउस, डायमंड हाउस, सब हाउस बना दिए बड़े बड़े सेंटर्स के, 700-800 स्टूडेंट बना दिए। किसकी कमाल है, एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई, और एक स्थान पर रह करके 140 देशों में सेंटर खोले, जहां पांव रख दिए वहां सेंटर खुल गया, सब बीमारियां भाग गई। लेकिन इतना प्यार बाबा के यज्ञ से, बाबा से, कोई भी खर्चा मेरे ऊपर एक रुपया नहीं होना चाहिए। भंडारी में जितना आता है पहले मधुबन भेज दो आधा, बाद में हम देखेंगे। कोई साधन नहीं, कोई सुविधा नहीं, न गाड़ी है न कोई साधन है, ट्राम में, ट्रेन में चढ़ चढ़ के सेवाएं की, त्याग का फल हम खा रहे हैं। लेकिन वो निश्चय ऐसा था उनका, दृढ़ता, भगवान ने कहा है, भगवान ने मुझे भेजा है, इंसान ने थोड़ी भेजा है, ऐसा निश्चय, इतना निश्चिंत बना दिया। वो नशा दिखाई देता था, उनके बोल में नशा दिखाई देता था, भगवान के हम मैसेंजर्स हैं, उनके पैगंबर हैं, उसने मुझे निमित्त बनाया है। बाबा के एक एक वाक्य में इतना निश्चय, ड्रामा कल्याणकारी है, उस ड्रामा में इतना निश्चय, अकल्याण तो मेरा हो ही नहीं सकता, कोई भी बच्चे का संगम पर अकल्याण नहीं हो सकता, कोई कितनी भी बातें आ जाएं। अगर हमने अपनी श्रीमत मर्यादा की लकीर को उल्लंघन नहीं किया है तो मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कोई कितने भी कलंक लगा दे, कोई कितनी भी बातें बना दे। लेकिन हम अगर मर्यादा के अंदर हैं, बाबा की छत्र छाया के नीचे हैं, संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, तो बच्चे हिलने की जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूं, भले लोग पहचाने न पहचाने, कितनी भी परीक्षाएं क्यों न ले, हिलने की जरूरत नहीं, तुम अचल रहो, अडोल रहो, धैर्यता का गुण धारण करो, कुछ सहन करो, कुछ सामना करो, कुछ संभालो, कोई भी पेपर आपको हिला न सके, ऐसे मजबूत बन जाओ। तभी मजबूत बनोगे जब संपूर्ण निश्चय है, यज्ञ किसका है, ज्ञान किसने दिया है, किसके लिए हमने अपने जीवन को समर्पित किया है, बाबा का एक एक वाक्य उसमें संपूर्ण निश्चय है। और साथ साथ निशाना इतना स्पष्ट है कि हमें संगम युग पर पहले पक्का ब्राह्मण बनना है, हमारा लक्ष्य ही हमारा निशाना है कि अभी हम पक्के सच्चे ब्राह्मण फरिश्ता बनकर के देवता बनेंगे, डायरेक्ट देवता नहीं बनेंगे, पहले हमें संपन्नता को प्राप्त करना है, संपूर्णता को प्राप्त करना है। अब दीदी ने क्या धुन लगा दी, निश्चय और नशा टूट था लेकिन निशाना स्पष्ट था कि अब मुझे घर जाना है, अब मुझे संपन्न बनना है, अब मुझे बाबा के पास जाना है। सब बातों से न्यारी, उपराम, साक्षी, कोई बात का इंटरेस्ट नहीं, जाना है जाना है जाना है, धुन लगा दिया और अपने निशाने पर पहुंच गए, संपन्न बन गए। जब शरीर छोड़ा 28 तारीख को बॉम्बे में शरीर छोड़ा था, थोड़ा ऑपरेशन हुआ, छोटा सा ऑपरेशन था, लेकिन ऑपरेशन के बाद वो कोमा में चली गई, कोमा से आई नहीं, वापस शरीर छोड़ दिया। अब जब शरीर छोड़ा तो सब बहुत स्नेह था, सबका स्नेह था, ले आए यहाँ पर बॉडी को, 30 तारीख को अंतिम संस्कार हुआ। और बहुत ब्राह्मणों के अंदर क्वेश्चन, इतना छोटा ऑपरेशन, अगर डॉक्टर पहले से बता देता तो हम यहाँ क्यों कराते, विदेश में कराते, छोटे से ब्रेन के ऑपरेशन से दीदी हमारी चली गई। बाबा शाम को आ गए संस्कार के बाद, गुलजार दादी के तन में बाबा आए और बाबा ने बड़ी प्यार से मुरली चलाते कहा, बच्ची न भगवान का दोष है न भगवती का दोष है। डॉक्टर का नाम भगवती था, लोग सब उसको बेचारे को कलंक लगा रहे थे, डॉक्टर ने बताया नहीं, ये किया वो किया, ऑपरेशन करके दीदी को मार दिया। संकल्प तो चलते ना ब्राह्मणों के। और उसमें बाबा कहता है, बच्ची न भगवान का दोष न भगवती का दोष, ये तो बाबा को जरूरत थी नई दुनिया के लिए, सदा ये एडवांस में आगे रही है, तो एडवांस पार्टी में इसको मैंने बाबा ने भेज दिया। आप बच्चे क्यों संकल्प चलाते हो, निश्चिंत रहो। सबको हल्का कर दिया, आपको भी प्यारी थी तो बाबा को भी प्यारी है। और दीदी का प्यार सेवा से था, जहां पर पहली सेवा है वहां दीदी, आबू आने के लिए दीदी, आबू में आई, मकान देखा, यहां ले आई संस्था को, दीदी आ गए, दिल्ली में सेवा किया कमला नगर में, दीदी, फिर यहां मम्मा व्यक्त हुई, दीदी, बॉम्बे में मकान लेने थे, उनके परिवार वालों ने माँ के कारण मकान लेके दिया, दीदी निमित्त बन गई जाकर के, माताओं की संभाल के लिए कराची में बोर्डिंग स्कूल की दीदी हेड, ये थी दीदी। लेकिन दीदी का जो निश्चय, नशा और निशाना था, इतना स्पष्ट था कि मुझे अभी संपन्न बनना ही है, कुछ भी हो। ओम शांति भवन बन गया, 8 फरवरी को ओम शांति भवन का उद्घाटन हुआ, बहुत धूमधाम से उद्घाटन हुआ। उसके बाद बस दीदी की धुन देखो, और ऐसी धुन से हॉस्पिटल गई, हुआ छोटा सा था, क्या हुआ था पता है, दीदी अमृत वेले योग कराती थी, रोज एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं करती, खुद आके गद्दी पर बैठती, एक दिन नहीं आई तो दादी जी बैठी थी पीछे योग करती थी, दीदी योग कराती, दादी सबसे पीछे सोफे बैठती थी, तो दादी को संकल्प चला दीदी क्यों नहीं आई, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, तो दादी उठ करके कमरे में आई दीदी के। तो उस दिन क्या हुआ, दीदी बाथरूम में गई तो थोड़ा चक्कर आया, और चक्कर आकर के दीवार से टकरा गई, तो दीवार का यहाँ कोना लगा, ब्लड निकला, तो चुपचाप आकर के वहां से आई बाथरूम से और बिस्तर पर लेट गई। तो उनकी ब्राह्मणियों ने डॉक्टर को बुला लिया, डॉक्टर ने देखा दादी आ गई अचानक, क्या हुआ दीदी क्या हुआ, तो सोचा आयु बड़ी हो रही है, शायद आंखों की रोशनी में कुछ अंतर आ गया होगा या बीपी बढ़ा हुआ होगा, चेक कराया, फिर बोला दीदी आप जाके बॉम्बे में एक बार चेक करा के आ जाओ। चेक कराने गए, डॉक्टर ने कहा ब्लड का सर्कुलेशन आंख तक नहीं पहुंच रहा है, एक गांठ है ब्रेन में, उसको छोटा सा ऑपरेशन है, 5 मिनट में कर देंगे, कर दो, बस ऑपरेशन हुआ, दीदी कोमा में चली गई, वापस ही नहीं आई। ये था दीदी का अंत। लेकिन वो जो स्थिति थी, सबसे उपराम, सबसे न्यारी, सब बात, जब हम जाएं, दीदी के पत्र हमें लिखते थे, पढ़ते थे, साथ में रहते थे, दीदी ये पत्र आया, अरे छोड़ो बाबा की 2 बातें लिख के भेज दो, बाबा बैठा है सब ठीक रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। मतलब कोई चीज का भी यज्ञ इतना है, जवाबदारियां इतनी हैं, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, इतना बाबा में फेत, बाबा का यज्ञ है, बाबा कराने वाला है, मुझे अपने लक्ष्य को, अपने निशाने को पाना है, बस हम पहुंच गए निशाने पर। तो ऐसी दीदी मनमोहिनी की लंबी कहानी है, और बहुत निश्चय, नशा और निशाना, वो तीनों चीजें उनके जीवन में इतनी दिखाई देती थी। इतना योग कराते कराते बाबा के प्यार में दोनों नयन भर जाते, गीले हो जाते, वो नशा चेहरे से दिखाई देता था। जरा भी किसी के आगे कभी झुकी नहीं होगी, ये मुझे क्या देगा। एक जज साहब थे दिल्ली के, वो एक वकील को ले आए, सुप्रीम कोर्ट का वकील। वो 5-6 दिन यहाँ रहा, नया नया था, उसको कुछ पता नहीं था। तो 5-6 दिन उसको रखा, तो बहनों ने कोर्स कराया, थोड़ा बहुत समझाया, खातिरी अच्छी हुई। और जब जाने लगा तो दीदी के पास ले आया वो जज साहब। जज साहब ने परिचय दिया उसका, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और ऐसे ऐसे आए हैं, 5-6 दिन बाबा के घर में रहे हैं। तो दीदी बड़े प्यार से पूछते हैं, वकील साहब कैसे लगा आपको। तो वकील साहब मजाकिया थोड़े थे, हंसी मजाक वाले थे, बोले दीदी इतनी अच्छी पालना मिली, इतनी मेरी खातरी हुई, जो मेरे ससुराल में भी ऐसी नहीं होती। ऐसे ऐसे मजाक में बोल दिया उन्होंने। अब दीदी ने उसका जवाब देना शुरू किया, अच्छा इतनी पालना मिली, इतना अच्छा लगा, तुम क्या देगा रिटर्न में। तो कहता दीदी जो बोलोगी, जो कहोगी। उसने समझा कुछ पैसा मांगेंगी, मकान मांगेंगी, कोई बात होगी, उनको क्या पता है क्या मांग लेंगी। बोला तुम 3 बार कहलाया, तुम जो मांगोगी देगा। बोला हाँ दीदी, जो आप कहेंगी करूं। बोला ठीक। कहती ऐसा करना, 1 आना और 5 खोटे पैसे, 2 चीजें मुझे चाहिए। बेचारा इतना बड़ा वकील, दीदी के 1 आना, वो आना चलता था ना 16 रुपया, जो 16 आने वाला होता था उस समय, 1 आना चाहिए। तो दीदी 1 आना आप क्या करेंगे, 1 आना तो चलता ही नहीं अभी। अरे तुम देगा कि नहीं बोल, मुझे चाहिए। अच्छा दीदी और क्या चाहिए। 5 खोटे पैसे। खोटे पैसे दीदी क्या करेंगे, खोटापन तो चलता ही नहीं है। बोला तुम देना है या नहीं बताओ। बोला जी दीदी आप बताओ मुझे क्या करना है। बोला 1 बार रोज सेंटर पर आना, 1 बार रोज सेंटर पर आना, और 5 खोटे पैसे काम क्रोध लोभ मोहंकार जो बांध के घूम रहा है दे दे। चुप हो गया वो। अब इतना बड़ा वकील आ गया जाल में। संकल्प लिया उसने कि हम 1 बार, पांडव भवन का स्टूडेंट था दिल्ली का, मैं 1 बार सेंटर पर जरूर आऊंगा कुछ भी हो जाए। अब 1 बार आना माना मुरली सुनना, रोज के वरदान, रोज का सार। 10 मिनट के लिए भी आता था डायरी में, लिखता था डेट वाइज। जब तक वो रहा एक दिन भी उसने मुरली मिस नहीं की। 1 आना हो गया, और जब 5 खोटे पैसे छोड़ने का संकल्प कर दिया, पवित्र हो गया, योगी हो गया। थोड़े दिन के बाद वहां से रिटायर होके मधुबन में समर्पित हो गया। सारे सेवाएं उसने संभाल ली। ये दीदी का निश्चय, उसका नशा और उसकी बात करने का तरीका था। ऐसे कितने लोगों को समर्पित करा दिया। तो हम सभी दीदी के दिनों में आए हैं, हम अपने निशाने को देखें। है लक्ष्य संपन्न बनना ही है, कुछ भी हो जाए संपूर्ण फरिश्ता बनना ही है, देवता तो बाद में बनेंगे, लेकिन संगम युग के लक्ष्य को, निशाने को पाना है, और रूहानी ईश्वरीय नशे में रहना है, और संपूर्ण निश्चय बुद्धि, कुछ भी हो जाए, कैसी भी माया आए, बहुरूपी, बहुरूपी है, कहते जिस रूप में तुम पहचान लोगे ना वो रूप बदल देगी, बाबा बन के भी आ रही है, ध्यान देना, इधर बाबा आ गए, उधर बाबा आ गए, बाबा अपना घर छोड़ के वहां भटक रहे हैं। समझना इस बात को, माया के बहुरूप हैं सब, माया फंसा रही है चक्कर में, इसलिए हम सबको संपूर्ण एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, ऐसे विजयी बन करके रहना। कुछ भी हो जाए, बाबा का दर, बाबा का घर, बाबा का साथ, बाबा का हाथ कभी न छूटे, इसका संकल्प करो तो निशाने तक सहज पहुंच जाओगे, नहीं तो निशाना दूर हो जाएगा, आप भटक जाओगे। भटक गए लोग, बड़े बड़े चले गए, भटक गए, निशाना कहीं चला गया, इधर लगाया उधर चला गया, क्योंकि उन्होंने भगवान के पार्ट को पहचान नहीं पाया। तो इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती, ठीक है। चलो 5 मिनट योग करके पूरा करेंगे। ओम शांति।